स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 5 फरवरी दिन रविवार और मैं हूँ अमरेश द्विवेदी। सन 62 के युद्ध से भारत में फंसे चीनी नागरिक वांछी एक बार चीन जाकर अपनों से मिलने के लिए है बेताब। बीबीसी की खबर से जगी है चीन जाने की उम्मीद।
52-53 आज समझिए पैर है मेरा भाई से सामना मुझे बात किया
पहली बार
भैया अभी तबीयत बड़े मेरे तबीयत ठीक है मैंने अभी कुछ नहीं है मैंने अच्छे है मैं तुम्हारे अभी आना के लिए हैं हम जिंदे हैं।
AIADMK महासचिव शशिकला होंगी तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री। पार्टी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के नाते क्या कदम उठाते हैं कैसे चलती हैं वो देखना पड़ेगा उसके देखने के बाद ही पता चलेगा कि इनकी हैसियत क्या है और ये कब तक टिक पाएगी।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारत में बीते 54 साल से फंसे चीन के पूर्व सैनिक वांगशी ने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही चीन जा सकते हैं। वांग साल 1962 की भारत और चीन की लड़ाई के दौरान रास्ता भटककर भारत पहुंच गए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सजा हुई। सजा पूरी करने के बाद वो भारत में ही रह गए। बीबीसी ने उनकी कहानी दुनिया को बताई तो चीनी दूतावास के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। उन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय से भी मदद का आश्वासन मिला है। AIADMK महासचिव शशिकला तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री होंगी। पार्टी विधायक दल की आज हुई बैठक में उन्हें नेता चुना गया। वो ओ पनीर सेल्वम की जगह लेंगी। पार्टी को इस्तीफा सौंपने वाले पनीर सेल्वम ने ही शशिकला के नाम का प्रस्ताव रखा। पनीर सेल्वम जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। शशिकला जयललिता की करीबी थी। वो फिलहाल विधायक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कानपुर की एक चुनावी रैली में नोटबंदी का मुद्दा उठाया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों ने अच्छे दिन की बात की थी उन्होंने सबको लाइन में लगा दिया। अखिलेश यादव के साथ इस रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने भी नोटबंदी का मुद्दा उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग चुनाव में इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा,
आपने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को चोट मारी है। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के पेट में आपने लात मारी नरेंद्र मोदी जी, और इस लात को उत्तर प्रदेश के गरीब लोग नहीं भूलने वाले हैं।
ये थे राहुल गांधी के शब्द। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ की एक रैली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में हुए गठबंधन पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही संभव है। मोदी ने विकास की नई परिभाषा भी बताई। उन्होंने कहा,
जब मैं विकास की बात करता हूँ, बी का मेरा मतलब है विद्युत, का मेरा मतलब है कानून व्यवस्था, और स का मेरा मतलब है सड़क।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 7 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए प्रतिबंध की बहाली का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सिएटल की एक कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके खिलाफ अपील की थी। अदालत ने प्रतिबंध को चुनौती देने वालों से कहा है कि वो सरकार की अपील पर जवाब दें। कोर्ट ने प्रशासन से कहा है कि वो भी इस पर सोमवार तक अपना जवाब पेश करें। प्रतिबंध को लेकर हवाई अड्डों पर भी भ्रम की स्थिति बन गई है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के सहायक सेबेस्टियन गोरका ने बीबीसी से कहा कि इससे काफी कम संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा,
There is no chaos. You really shouldn't believe the spin. The facts speak.
कोई अव्यवस्था नहीं है, तथ्य अपने आप जानकारी दे रहे हैं। शनिवार को अमेरिका में प्रवेश को लेकर 3,25,000 लोगों में से 109 लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, इसीलिए हमें पूर्वाग्रह रखने वाली मीडिया की बातों में नहीं आना चाहिए। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के सहायक गोरका के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान ने कहा है कि वो इस महीने होने वाले वर्ल्ड कप में अमेरिका की कुश्ती टीम को हिस्सा लेने की इजाज़त देगा। अपने नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के जवाब में ईरान ने अमेरिकी नागरिकों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। ईरान ने कहा कि ये फैसला अमेरिकी कोर्ट की ओर से ट्रंप के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद लिया गया है। फ्रांस के अधिकारी पेरिस के एक संग्रहालय के बाहर सैनिकों पर हमला करने के मामले के संदिग्ध से पूछताछ की कोशिश में जुटे हैं। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध अब तक जवाब देने से इनकार करता रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbcindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 1962 में लड़ाई हुई थी। लड़ाई तो कुछ दिनों में चीन की तरफ से हुए युद्ध विराम के बाद थम गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए लड़ाई जारी रही। चीन के सैनिक वांग छी भी उन्हीं में से एक थे। रास्ता भटककर भारत की सीमा में पहुंच गए और पकड़ लिए गए। कई साल जेल में रहे, फिर रिहा हुए और छोड़ दिए गए मध्य प्रदेश के एक गांव तिरोड़ी में। वो अपने देश लौटना चाहते थे, लेकिन भारत और चीन के ऊबड़ खाबड़ कूटनीतिक रिश्तों की वजह से 54 साल बाद भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। वो यहाँ रह गए, शादी की, बच्चे भी हुए, लेकिन अब जिंदगी की संध्या बेला में वो चीन में अपने बुजुर्ग हो चले रिश्तेदारों से एक बार मिलना चाहते हैं। क्या उनकी हसरत पूरी होगी? सुनिए बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की ये खास रिपोर्ट।
भारत चीन युद्ध में परिवार से बिछड़ने के 54 साल बाद पहली बार वांग छी उर्फ राज बहादुर और बड़े भाई वांग चिरयुआन आमने सामने थे। चीन के शांसी में जन्मे 77 वर्षीय राज बहादुर नागपुर से 200 किलोमीटर दूर तिरोड़ी के ग्राम पंचायत के एक कमरे में बैठे थे। उनकी निगाहें मेरे हाथों में मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जमी थी। स्क्रीन की दूसरी ओर थे 82 वर्षीय वांग चिरयुआन। करीब 3000 किलोमीटर दूर चीन के शांसी के शियानयांग शहर में वांग चिरयुआन एक कमरे में बैठे थे। सिर पर गर्म टोपी, हाथ में चाय का प्याला, चेहरे पर गंभीरता। मोबाइल ऐप वीडियो पर जब दोनों भाई बात कर रहे थे तो पिता के झुर्रियों से भरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख उनके तीनों बच्चे अनीता, विष्णु और आशा ने उन्हें घेर लिया था। चीनी भाषा में 17 मिनट चली बातचीत में कभी कभी ऐसा लगता था कि दोनों भाई रो देंगे। मैं शांत दोनों को देख रहा था। बातचीत खत्म हुई, हाथ हिलाकर दोनों ने एक दूसरे को विदा कहा। मैंने राज बहादुर से पूछा, क्या बात हुई?
बात हो गया भैया, कह रहा है यदि चाइना यदि आ जाओ, अभी चाइना कितना आगे हो गया, तुम दिख के खूब खुश हो जाए, अपने परिवार है भी तो इतने अच्छे है, कितने आराम है, तुम दिख के खुश हो जाए। बस 52-53 साल है आज, समझिए पैर है मेरा भाई से बोल पे सामना मुड़ी बात किया
पहली बार।
भैया अभी तबीयत बड़े मेरे तबीयत ठीक है, मैंने आप कुछ नहीं है, मैंने अच्छे है, मैं तुम्हारे अभी आना के लिए है, हम चंद हैं।
जनवरी 1963 में भारत चीन युद्ध खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद चीन की सेना में सड़क बनाने वाले इंजीनियर राज बहादुर को तवांग में भारतीय सीमा के भीतर पकड़ लिया गया था। सरकार का दावा था कि वो गैर कानूनी ढंग से भारत आए। खुद को पकड़े जाने की घटना को राज बहादुर याद करते हैं।
1963 जनवरी पहले तुम चाइना उस तुम छुट्टी करते हैं, तो छुट्टी उस रोज में घूमना यंगड़ तड़ पर घूमना नहीं कर गया, घूमना नहीं करे मैं यंगड़ फटाकर हो गया, रास्ते मुड़ गया, बाद इंडिया के रेड क्रॉस वाले जीप मिल गया, मैं उससे मदद मांगा, तो मदद कचहरी ऐसी मैं चाइना रेड क्रॉस देना का मैं नहीं देना, मैंने सीधा इंडिया अंदर लाए, कोई कागजाज नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, तो इंडिया गवर्नमेंट से मैंने 7 साल चेहरे अंदर बंद करा रहे।
उनका दावा है कि वो गलती से तवांग के रास्ते भारत में घुस गए, उन्हें जेल हुई, उन्हें फिर रिहा कर दिया गया, बाद में उन्हें तिरोड़ी में छोड़ दिया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो आज तक वापस चीन अपने घर नहीं जा पाए हैं। तिरपन साल बाद आज भी चीन अपने घर जाना चाह रहे वांग छी या राज बहादुर के बारे में कई बातें साफ नहीं हैं। क्या वो युद्धबंदी हैं या भारतीय कानून उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रहा है? चीन का पासपोर्ट होने के बावजूद वो अपने वतन क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। धर्म से बौद्ध राज बहादुर ने भारत में ही शादी की, यहीं बच्चे पैदा हुए, उन्होंने अधिकारियों, नेताओं, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को चिट्ठियां लिखी, लेकिन घर जाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। एक अनजान देश के दूरदराज इलाके में दशकों बिता देने वाले राज बहादुर का एक दिन भी चीन में परिवार को याद किए बिना नहीं गुजरता। उन्हें भारत से बाहर जाने के लिए जरूरी एग्जिट वीजा का इंतजार है। ये इंतजार इतना लंबा हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। इस इंतजार ने भगवान से उनका विश्वास तक हिला दिया है। हालांकि उनके घर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं, साथ में है उनकी माँ की तस्वीर। वर्ष 2002 में 40 सालों में पहली बार राज बहादुर की अपनी माँ से मोबाइल फोन पर बात हुई थी। फोन पर 81 वर्षीय माँ ने कहा था,
माँ कुछ नहीं मर्द, माँ बस मर आओ, बस माँ कुछ नहीं मर, बस एक सब तो आओ। मैंने से मैं आखिरी उम्र है, मैंने उम्र बहुत हो गया, माँ नौ पे साढ़ों पे हो गए। 2006 माँ का मेरे पच्चीस जाए पता है 2006 मेरे ताती जब मर का समय तो माँ ने नाम लेते याद करते क्या करो। मैंने सोची मैं दुख होकर आखिरी माँ का आत्मा कितना दुख पड़ गया। मर का समय मैंने नाम लेके जा रहे सब मेरे का सब खुशी, मैंने एक बेटा नहीं मिला, उनका परिवार मैंने मेरे खाली बच्चे लोग का फोटो मैंने भेज दिए, सब लिख रही है, बस माँ का आखिरी आशी तुम आओ मैंने से मिलो।
ये बताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वर्ष 2006 में माँ चल बसी। मरते वक्त उनके होठों पर दशकों से बिछड़े राज बहादुर या वांगछी का नाम था, जिनके बच्चों पत्नी को आखिरी वक्त भी सामने से वो देख नहीं पाई। तस्वीरों के सहारे ही उन्होंने आखिरी बार बेटे को याद किया और आंखें मूंद ली। वांगछी के जीवन के पन्ने इतने ज्यादा हैं कि उन्हें कैद करना समझना आसान नहीं। कई स्थानीय अधिकारियों को भी उनके बारे में पूरी जानकारी तक नहीं। हालांकि उनसे जुड़े महत्वपूर्ण कागजात बालाघाट जिला पुलिस अधीक्षक दफ्तर के विशेष ब्रांच कमरे की एक सिलेटी रंग की अलमारी में बंद हैं। राज बहादुर या वांगछी का जन्म मई 1939 में शांसी प्रांत में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, पिता किसान थे। 1960 में वो सेना में शामिल हुए। पांच भाइयों में मंझले राज बहादुर माँ के बेहद करीब थे, उनकी दो बहनें भी हैं। भारतीय सेना ने जनवरी 1963 में वांगछी या राज बहादुर को पकड़ लिया। उन्हें जेल हुई, उन पर मुकदमा चला और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर अधिकारियों ने उन्हें तिरोड़ी लाकर छोड़ दिया ताकि वो काम धंधा कर जीवन बसर कर सकें। अधिकारियों ने उन्हें वापस चीन भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की ये साफ नहीं। भाषा न समझने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हुई। शुरुआत में अनुवादक की मदद से अधिकारी उनसे बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे राज बहादुर ने टूटी फूटी हिंदी सीख ली। 1969 में मैंगनीज की खानों में काम के कारण तिरोड़ी गांव मजदूरों से पटा था। सबसे पहले उन्हें तिरोड़ी थाने लाया गया।
तो हम इस वक्त हैं तिरोड़ी के पुलिस थाने के सामने। तो सबसे पहले आपको यहां पर लेकर आए?
सबसे पहले पंजाब से अपने बालाघाट थाना लाए, बालाघाट थाने यही लाए,
यहाँ पर बालाघाट। हाँ। तो यहाँ पर आपको कितने दिन रखा?
ये तो चाहता था उन्हें एक हफ्ता लखा है बस।
कहीं जेल के अंदर?
ये से ऑफिस का पास है, ये से लखा है, कोई चेयर नहीं था, नहीं बंद नहीं कर, ये से खोलो ऑफिस, बस हफ्ता भर पुलिस के अंदर लखा है। फिर एक वो सेट का सुपरत कर।
ठीक है, चलो हम चलते हैं वहाँ पे। अब सेट के यहाँ आइए। तो ये सेट का मकान है?
हाँ, उस समय यही हमारे सेट का मकान है।
अच्छा, ये इलाका, इस इलाके का क्या नाम है?
ये इलाका है तो कंपनी रोड है,
खुजरी चौक। तो यहाँ पर पहले चक्की चलती थी पूरा है?
चक्की तो चलता है, चक्की फाजू है।
यहाँ पर जब आपको लाया तो सेठ ने क्या बोला फिर?
वह हमारा काम हमारे मशीन है वही चलाओ, चक्की है।
तो सेठ ने बोला नहीं कि मैं क्यों रखूँ आपको इस तरह?
बोले थानदार से बात की है, वो सेठ ने ठीक है हमारे बस लोग, हमारे बस चक्की है मशीन है।
क्या क्या? एक तो गेहूं
गेहूं पीसना, सब पीसना है,
सरसों भी पीसना,
सरसों का तेल तेल मशीन है।
स्थानीय लोगों के लिए राज बहादुर उत्सुकता पैदा करने वाली चीज थे। कुछ ने परेशान किया तो कईयों ने प्यार दिया। सुरेश नंदरधने उनके पड़ोसी हैं।
इस मोहल्ले में मैं 1975 में हम लोगों ने इस क्वार्टर में आ गए थे, इन्हें बहादुर जी जहाँ रहते उसके सामने में पड़ोस में, तब से मैं इनको जानता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, आज तक पीने खाने में रहे नहीं और किसी से मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम रखते बस। हर दुख सुख में इन लोगों बहुत हेल्पफुल इन नेचर है और अधिकांश सहयोग करते हैं, यानी किसी की भी मौत मट्टी से लेके हर काम में इन्हें बढ़ चढ़ के भाग लेते।
कुछ स्थानीय लोगों ने हमें यह भी बताया कि वांगछी या राज बहादुर के साथ पुलिस ने कथित तौर पर कई बार मारपीट की। राज बहादुर ने पुलिस की कथित मारपीट पर अधिकारियों को कई पत्र लिखे। ये पत्र आज भी फाइलों में उसी सिलेटी रंग की अलमारी में बंद हैं। एक पत्र के मुताबिक उन्हें इतना पीटा गया कि वो दो महीने खटिया से नहीं उठ पाए।
मैं कहता हूं बोले मैं रोक रोक तंग कुचित रात रोते तंग तो लोग मीट के रात सो के अकेले रोते क्या कहाँ कहाँ फंस गया नहीं माँ मीटते या नहीं पाते हम ये तो रोते हैं मैंने माँ मैंने कितनी प्यार है आज माँ का हाल हुआ।
एक स्थानीय अधिकारी ने बताया, जांच के बाद सभी आरोप गलत पाए गए थे। सालों से अकेले रह रहे राज बहादुर पर अब शादी का दबाव बढ़ने लगा था। उन्हें एक स्थानीय ईसाई लड़की पसंद आई, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलता के कारण मामला आगे न बढ़ सका। आखिर जबरदस्ती 1975 में एक महार लड़की सुशीला से उनकी शादी करवा दी गई। बेहद गरीब घर की सुशीला के लिए ये रिश्ता आसान नहीं था।
हमें अक्ल नहीं थी, लेकिन शादी कर लिए। करने के बाद में एक दो महीना बीत गया, उसके बाद में हमारे समझ में से नहीं आता था, ना भाषा आती थी, ना कोई समझ, कुछ भी नहीं। फिर भी हम बोले कि चलो अब जाने दो, कोई कुछ बताए कोई कुछ बताए, वैसे अपन भी चलते थे। फिर शादी होने के बाद में फिर आदत पड़ गई रहने रहते रहते, ऐसे करते करते मैं दो चार महीना बीत गया, थोड़ा थोड़ा भाषा समझ में आने लग गई। शुरू शुरू में तो लगता ही था सर कि कहाँ से कहाँ हमारे माँ बाप ने शादी कर दिए करके। अब माँ बाप की भी मजबूरी थी, एक माँ थी बेचारी, कमाने वाली, चार भाई बहन थे, तो कहाँ जाते फिर अब हम।
दिन बीतते गए, बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन पिता को सरकारी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण परिवार सरकारी सुविधाओं से वंचित रहा। दिन बेहद गरीबी में कट रहे थे। गरीबी के कारण बेटे श्याम की मानसिक बीमारी का इलाज तक नहीं हो पाया और वो चल बसे। राजबहादुर के बेटे विष्णु बताते हैं,
यहाँ पे जब फादर आए तो फादर को यहाँ की सिटीजनशिप थी नहीं। उसके बाद जब फादर को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं थी तो उनके जो बच्चे थे, यानी हमको भी यहाँ की सिटीजनशिप पहले नहीं दी गई थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पंचायत में हमारा नाम चला और ये सब, हमारा डेट ऑफ बर्थ यही हुआ, ये सब चीज़ें, तो धीरे धीरे हमारा डॉक्यूमेंट्स बने। उसके बाद आज भी फादर का कास्ट सर्टिफिकेट कुछ है नहीं और ना हमारा कोई कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पे। इन चीज़ों से हमको एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आई बहुत सी, कि भाई आप किस कास्ट से एग्ज़ाम फाइट करोगे, या जो भी नौकरी के लिए भी बहुत तरह से तकलीफें पैदा हुई हैं इन चीज़ों से। और आज तक जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे हमको इशू नहीं किया गया है।
80 के दशक में एक दोस्त ने राजबहादुर को हवाई पत्र के बारे में बताया। चीन में परिवार को भेजे गए पत्र का जवाब एक महीने बाद आया। तब से आज तक पत्रों का आना जाना जारी है। राजबहादुर ने मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 2009 में राजबहादुर के भाई का बेटा भारत घूमने आया, जिसकी मदद से उन्होंने चीन के पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी। आज उनके पास चीन का पासपोर्ट है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार उन्हें भारत से बाहर जाने के लिए एग्जिट पास की जरूरत होगी, जिसे हवाई अड्डे पर दिखाना होगा। बालाघाट के कलेक्टर भरत यादव का पक्ष जानने जब हम उनके दफ्तर पहुंचे तो राजबहादुर से जुड़े तमाम कागजात उनकी मेज पर रखे हुए थे।
मैंने अखबार में ही पढ़ा था, उस दिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे भी एक मतलब इस तरह से लगा था कि कैसे व्यक्ति इतने सालों से रह रहा है और जिसके बारे में मतलब सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं है कि भाई वो युद्धबंदी हैं या वो मतलब वो खुद नहीं जाना चाहते या हम मतलब हमारे नियम कानून उनको नहीं जाने दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं है। वो व्यक्ति रह भी रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब एक अजीब सा लगा था कि ये स्थिति क्यों है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें मतलब सारे स्तर पे मुझे जो लगता है कि कुछ ना कुछ कमी जिसको हम कह सकते हैं या एक तत्परता जितनी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी कम रही है। उनको नागरिकता मिल जाए, वो नहीं जाना चाहें उनके ऊपर है, लेकिन वो जाना चाहते हैं तो वो जा पाएं।
बीबीसी ने इस मामले पर गृह मंत्रालय को सवाल भेजे हैं और उनके जवाब का इंतजार है। मैंने राजबहादुर से पूछा, चीन जाने के बाद क्या वो वापस भारत आना चाहेंगे? वो अपनी पोती को गोदी में खिला रहे थे। बोले, मैं इन बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मेरा परिवार यहीं है। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला को कभी कभी ये भय जरूर सताता है कि क्या चीन जाने के बाद वो वापस उनकी ज़िंदगी में आएंगे।
अब डर तो लगेगा ही सर, फिर अब बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको देखना पड़ेगा ना, कौन कमाई कमाने वाले हैं। अब उनके रहने पे बाल बच्चों की थोड़ी सी ये हो जाती है ना सहूलत भी,
तो मन में डर है।
हाँ।
क्या करेंगे अगर नहीं आ पाते हैं वापस?
हम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे सर अब?
विनीत खरे, बीबीसी, तिरोड़ी गांव, बालाघाट।
ये थी कहानी 54 साल से भारत में रह रहे चीन के सैनिक वांग छी की। और अब सीधे चलते हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे के पास। विनीत, आपने वांग छी की कहानी दुनिया को बताई है, बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर इस खबर के छपने के बाद से अब तक क्या कुछ हुआ है?
शुक्रिया अमरीश। जब से ये खबर हमने की है उसके बाद से चीनी मीडिया में खासकर इसकी काफी चर्चा है। भारत में कई वेबसाइट्स ने इस कहानी को छापा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या वांग छी वापस चीन जा पाएंगे और जा पाएंगे तो कितनी जल्दी जा पाएंगे, इसमें इसको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे किसी पत्रकार ने एक सवाल पूछा तो उसके जवाब में उनका कहना था,
we are aware of this matter, especially now the BBC documentary has, you know, brought it into a much wider public domain.
हम इस मामले को जान गए हैं, खास तौर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद ये मामला काफी लोगों तक पहुंच गया है। हम गृह मंत्रालय के अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं ताकि इस मसले पर हम बेहतर तरीके से काम कर सकें।
तो ये थे विकास स्वरूप। लेकिन जब कल जो है चीनी दूतावास के कुछ अधिकारी तिरोड़ी गांव पहुंचे थे और मैं भी वहां पर था, तो उसको देखकर जो परिवार वांगची का उनकी उम्मीद जगी है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। उनके बेटे विष्णु ने बताया कि जो स्थानीय कलेक्टर है उन्होंने उनसे विष्णु से कहा है कि जो दस्तावेज हैं वो केंद्र सरकार ने मंगवाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आना और कल चीनी दूतावास के अधिकारियों का वहां पहुंचना, कल वो जो चाइनीज स्टेट मीडिया है उनके पत्रकारों के साथ वहां पर पहुंचे थे। मैंने वहां पर जो ये काउंसलर हैं चीनी दूतावास के यान शियाओचे, मैंने उनसे पूछा कि वो क्या किस मकसद से यहाँ पर आए हैं, तो उनका कहना था,
कोशिशें जारी हैं, चीन की सरकार इस मसले पर ध्यान देगी, हम भारत सरकार की मदद से वांगची के मामले को सुलझा सकते हैं।
तो ये थे यान शियाओचे और ये कल काफी गिफ्ट के साथ वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चीन की सरकार और भारत सरकार इस मामले पर आपस में टच में है, लेकिन ये कब तक यहाँ पे रहेंगे, परिवार का कहना है कि हमें क्लैरिटी चाहिए, जो एग्जिट डॉक्यूमेंट चाहिए हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए चीन में, वो उसको लेकर अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है कि उस पर क्या कार्रवाई चल रही है, वो कब तक आएगा, टाइम फ्रेम नहीं है परिवार के साथ। तो परिवार मतलब बिल्कुल इंतजार में कि कहां कुछ हो, कोई उनसे कुछ बताए कि भाई क्या हो रहा है। जी
अमरीश जी, विनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम भी उम्मीद करते हैं आपके साथ साथ कि जल्दी ही भारत और चीन की सरकारें इस बात पर चर्चा करें और कुछ रास्ता निकले ताकि वांगची अपनों से मिलने एक बार चीन जा सकें। बहुत शुक्रिया आपका।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बेहद खास रही वीके शशिकला राज्य की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आज एआईएडीएमके विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। शशिकला को नेता बनाने का प्रस्ताव राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने पेश किया। अब जयललिता और एमजी रामचंद्रन की तरह ही शशिकला भी पार्टी महासचिव और राज्य की मुख्यमंत्री का पद एक साथ संभालेंगी। एक रिपोर्ट के साथ इमरान कुरैशी।
ये सिर्फ तमिलनाडु में हो सकता है कि जो व्यक्ति आज तक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीता हो वो राज्य का मुख्यमंत्री बन रहा है। मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने खुद अन्ना डीएमके की विधायक दल की बैठक में संकल्प लाया और शशिकला नेता यानी कि अगले मुख्यमंत्री चुन ली गईं और पन्नीरसेल्वम तीसरी बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गए। वो पहले भी दो बार जब जयललिता जिंदा थी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो क्या वजह था शशिकला को मुख्यमंत्री बनने का जब वो जयललिता के मौत के थोड़े दिन बाद ही महासचिव बन गई थी? हमने ये सवाल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेन्नई डायरेक्टर एन सत्यमूर्ति से पूछा। उन्होंने कहा, दरअसल जयललिता के जाने के बाद अन्ना डीएमके को तलाश थी ऐसे शख्स की जो पक्ष का निर्माण करें और जो वोट बटोर सकें। जैसे कि हर एक को पता है कि अन्ना डीएमके के लिए सिर्फ जयललिता वोट लाती थी। पार्टी का मानना है कि थोड़े हद तक शशिकला पार्टी का निर्माण कर सकती हैं और पार्टी को टूटने से रोक सकती हैं। ये थे एन सत्यमूर्ति के शब्द। तमिलनाडु की द्रविड़ियन राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी की तरह है, जहां सरकार से ज्यादा दल को महत्वता दी जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अन्ना डीएमके के विधायक दल ने तो शशिकला को नेता चुन लिया, पर पार्टी काडर उनसे नाखुश है। इसीलिए सितंबर महीने से जब जयललिता अस्पताल में भर्ती हुई और आज तक भी पार्टी काडर हर रोज उनकी भतीजी दीपा जयकुमार के घर के सामने प्रदर्शन करती है कि वो राजनीति में आए। लेकिन चेन्नई के डेक्कन क्रॉनिकल के संपादक भगवान सिंह आज के घटनाक्रम को अलग नजरिए से देखते हैं।
And one thing that we all do not know, I mean, not much has been written about.
शशिकला के पति एम नटराजन ने 1991 में जयललिता को समर्थन ऐसे समय किया जब उनको एमजी रामचंद्रन के देहांत के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था। वो एक बड़े ऑपरेटर हैं। हम तो उनको इस जमाने के कौटिल्य बुलाते हैं। अगर वो जयललिता के लिए किए हैं तो क्या अपनी पत्नी के लिए नहीं करेंगे? ये थे भगवान सिंह के शब्द। भगवान सिंह एक और बात कहते हैं कि नटराजन कुछ हफ्ते पहले बताया था कि केंद्र की बीजेपी सरकार अन्ना डीएमके को तोड़ने की कोशिश कर रही है, शायद इसीलिए वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करने लगे। लेकिन इसके बावजूद शशिकला का नाम ऐसे ज्यादा संपत्ति केस में अभी भी है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। शायद उस वक्त भी पन्नीर सेल्वम कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
जयललिता के निधन को आज 2 महीने पूरे हुए हैं। इतने कम समय में शशिकला का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का फैसला लिया जाना स्वाभाविक है या फिर AIADMK में एकता बनाए रखने के लिए ये जरूरी हो गया था? यही पूछा मैंने वरिष्ठ पत्रकार MR नारायण स्वामी से।
जिस ढंग से जयललिता की मौत हुई और जिस ढंग से उसके बाद जो कुछ हुआ, ये तो साफ नजर आ रहा था कि शशिकला मुख्यमंत्री बनना चाहती है। भले ही पार्टी में सब लोग उसको चाहते हों ना चाहते हों, लेकिन वो बनना चाहती है। और चूंकि वो बहुत समय से उनकी कॉन्फिडेंट रही थी जयललिता की और उनके साथ रहती थी, उनके साथ चलती थी, तो एक बार उन्होंने अगर ये बात अपने आसपास के लोगों को बता दी कि मैं बनना चाहती हूँ, तो ये तो बात निश्चय था कि वो बनेंगी बनेंगी। तो सवाल तो ये है कि वो कब बनेंगी। तो बन गई। उन्होंने लगता है एक दो पतंग उड़ाए होंगे देखने के लिए कि भाई क्या मेरे खिलाफ कुछ लोग विद्रोह है या लोग आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन उसको लगा नहीं कि कोई कुछ मुंह खोल के कम से कम बोल रहा है। तो सारे संदर्भों को देखकर उसको लगा होगा कि ठीक है, समय आ चुका है, तब तक पतंग उड़ाते चले, तो उन्होंने अपना चाल चल लिया।
जयललिता के मुख्यमंत्री रहते इस तरह का शशिकला का जो एम्बिशन है वो इस तरह से क्यों नहीं कभी उभरा?
देखिए, पार्टी में सिर्फ एक नेता थी पहले पोजीशन से लेकर 10वें पोजीशन तक, बल्कि अगर आप उस नंबर को आगे खींच लें तो भी सिर्फ एक ही नेता थी। और सवाल नहीं उठता था कि उस समय पार्टी में कोई नेता दूर दूर की बात कर ले कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सवाल हम यही नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ सही हुआ, क्योंकि जयललिता की एक अपनी पर्सनैलिटी थी, अपनी एक छवि थी। और लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि जयललिता की जो छवि थी उसके आसपास मीलों दूर इनकी छवि है शशिकला।
आने वाले दिनों में आप इनकी भूमिका तमिलनाडु की राजनीति में, जो कांग्रेस को देखें, डीएमके को देखें, तो इनकी भूमिका आप कैसे देखते हैं?
देखिए, एक बात तो सही है कि शशिकला का कोई पॉलिटिकल चरित्र नहीं है। भले ही वो एडीएमके में जयललिता की कॉन्फिडेंट बनी रही या शैडो बनी रही, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने रोल पॉलिटिकल को पता ही नहीं कि उन्होंने एडीएमके के साथ गाली गलौज किया हो, लड़ाई किया हो, संघर्ष किया हो, या कुछ ऐसी पार्टियों के साथ जो एडीएमके के साथ अक्सर चले हैं, चाहे वो वामपंथी दल हैं या और छोटे मोटे पार्टियां हैं या कांग्रेस है, उनके साथ इन्होंने वार्तालाप किया हो, उनके नेताओं के साथ इनके अपने कोई रिश्ते हो। तो पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस, पॉलिटिकली इमेच्योर, आज के तारीख में हम ये कह सकते हैं। और ये कहने में बहुत दुखदायी बात हो सकती है उनकी तरफ से, लेकिन ये बहुत बड़ा ये गलत बात नहीं होगी। तो हमें तो ये देखना पड़ेगा कि ये आगे कैसे चलती हैं, आगे अपने आप को एक एडीएमके के नेता के नाते या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाते क्या कदम उठाते हैं, कैसे चलती हैं, वो देखना पड़ेगा। उसके देखने के बाद ही पता चलेगा कि इनकी हैसियत क्या है और ये कब तक टिक पाएगी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार MR नारायण स्वामी, जिनका कहना है कि शशिकला का व्यक्तित्व जयललिता के करिश्माई शख्सियत के सामने कहीं नहीं टिकता और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पार्टी और समर्थकों ने शशिकला से जो उम्मीदें लगाई हैं वो उस पर कितनी खरी उतरती हैं। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारत में बीते 54 साल से फंसे चीन के पूर्व सैनिक वांग शी ने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही चीन जा सकते हैं। वांग साल 1962 में भारत और चीन की लड़ाई के दौरान रास्ता भटककर भारत पहुंच गए थे। AIADMK महासचिव शशिकला तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री होंगी। पार्टी विधायक दल की आज हुई बैठक में उन्हें नेता चुना गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक चुनावी रैली में नोटबंदी का मुद्दा उठाया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में हुए गठबंधन पर सवाल उठाया। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 7 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए प्रतिबंध की बहाली का आदेश देने से इनकार कर दिया है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया तिलक राज भाटिया ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।